कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha Shyam Sundar, Radha Shyam Sundar Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivraj Kacharya Stotra Sat His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya Naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam Tato jayamudirayet Nashta prayeshva bhadreshu Nityam bhagavata sevaya Bhagavatyuktama shloke Bhaktir bhavati naishthiki Granthraj Srimad Bhagavatam Dusra Skand Nova Adhyay Shri Bhagavan ke vachan ka uddharan dete huye Prashno ke uttar Shlok Sankhya 20 Shri Bhagavan Uvacha Tvaya Aham Toshitaha Samyak Veda Garbhaha Sisrikshaya Chiram Bhritena Tapasa दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, सम्यक् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। दोषकूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्रीभगवान् उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्य शिक्षया अमृतेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। माताजी, श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भस्य शिक्षया वेदेन तपसा। दुस्तोषः कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, त्वयाहं तोषितः सम्यग् गर्भस्य शिक्षया चिरं भृतेन तपसा। कूटयोगिनां। श्री भगवान उवाच, परम सुंदर भगवान ने कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा अहम, क्षमा कीजिए, अहम मैं तोषितः प्रसन्न हूँ, सम्यक पूर्ण वेद गर्भ, वेद से संपृक्त शिश्रिक्षया उत्पत्ति के हेतु चिरम दीर्घ काल से भृतेन संचित तपसा तपस्या से दुस्तोषः कठिनाई से प्रसन्न होने वाला कूट योगिनाम छद्म योगियों के लिए अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूं। तात्पर्य, तपस्या दो प्रकार की होती है, एक तो इंद्रिय तृप्ति हेतु और दूसरी आत्म साक्षात्कार हेतु। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं जो अपनी तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु ऐसे भी योगी हैं जो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए तप करते हैं। उदाहरणार्थ, यदि परमाणु हथियार की खोज के लिए तप किया जाए तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तप कभी भी संतोषप्रद नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य को मरना है, किंतु यदि किसी के तप द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि उनके सारे अंश भगवान के धाम पहुंचकर शाश्वत जीवन और आनंद भोगें, और सारी भौतिक सृष्टि की रचना इसी उद्देश्य से की गई है। ब्रह्मा ने इसी उद्देश्य के लिए अर्थात सृष्टि क्रम को नियमित करने के लिए तपस्या की, जिससे भगवान प्रसन्न हो सकें। इसीलिए भगवान उनसे इतने प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान से पूरित कर दिया। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान को जानना है, अन्य कार्यों में इसका दुरुपयोग करना नहीं। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते वे कूट योगी कहलाते हैं, जो निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं। कृपया अनुवाद दोहराइएगा। सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया, हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं आराध्य भगवान् व्रजेश तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ब्रह्मा जी का जन्म जब हुआ कमल पुष्प के ऊपर तो उनको समझ में नहीं आया कि वो कौन है, वो किस स्थान में बैठे हुए हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। सृष्टि की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी ने जन्म लिया है, परंतु ब्रह्मा जी को यह पता नहीं चला कि सृष्टि की रचना कैसे की जाए और इस कमल पुष्प का उद्गम ढूंढ नहीं निकाल पाए। फिर बहुत भ्रमण करने के बाद जब उन्होंने तप ये दो अक्षर सुने तो अपने आप को उन्होंने तपस्या में स्थित कर दिया और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और यह कारण भगवान बता रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। जो तपस्या भगवान से संबंधित नहीं होती है वो असत कहलाती है भगवद गीता के अनुसार, और ऐसे असत तपस्या न इस जन्म में लाभ प्रदान कर सकती है न आने वाले किसी जन्म में, वो बिल्कुल व्यर्थ ही है। श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम है, इसे और कोई लाभ नहीं मिलता है। केवल वो तपस्या जो कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, भगवान के आदेशानुसार किया जाता है, उसी तपस्या से जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। ऋषभदेव महाराज भी अपने पुत्रों को ऐसा ही उपदेश देते हैं। नायम देहो देह भाजाम रिलोके कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वो कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, न अयम देह, ये जो देह है भौतिक देह है परंतु मनुष्य देह है, देह भाजाम उन लोगों के लिए जिन्होंने देह धारण किया है, ये उचित नहीं है कि वो इस मनुष्य देह का प्रयोग केवल उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करें, अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए, जो कि विड़ भुजाम मतलब गंदे वस्तु खाने वाले पशु भी प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को दिव्य तपस्या में स्थित करे, जिससे कि ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, अनंत आध्यात्मिक आनंद या सुख की प्राप्ति हो सके। लोग तो तपस्या कर रहे हैं, करना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति स्थानिक कर्षति, भगवान ने कह दिया है भगवत गीता में कि ये भौतिक जगत तो तपस्या और संघर्ष का स्थान है। तो कोई व्यक्ति तपस्या नहीं भी करना चाहे तो संभव नहीं है। प्रकृति के तीन गुणों से बाध्य होकर, माया शक्ति के से बाध्य होकर उसे तपस्या करना ही होगा। तपस्या किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता यहां। तपस्या क्या चीज है? जब हम कोई कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं और उस कठिन परिस्थिति से जो दुख उत्पन्न होता है, जो कठिनाई महसूस होती है, उससे हम दूर होने के लिए कोई कार्य करते हैं, अवांछित वस्तु को न चाहने के लिए या उससे दूर रखने के लिए जो कार्य करते हैं उसे तपस्या कहते हैं, या तो फिर किसी इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए हम बहुत चेष्टा करते हैं, इसे भी तपस्या करते हैं कहते हैं। एक साधारण तौर से यहां तो हर एक व्यक्ति सुख के खोज में है, सुख नहीं पा रहा है लेकिन परिश्रम कर रहा है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि ये भौतिक जगत एक ऐसा स्थान है जहां कि हमेशा हम उस चीज को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें चाहिए, लेकिन वो वस्तु हमें नहीं मिलता। और ये भौतिक जगत एक ऐसा स्थान है जहां हम उन लोगों से हमेशा बिछुड़ जाते हैं जो हमसे बहुत प्रिय होते हैं। तो ये भौतिक जगत की पहचान है। तो सभी लोग तपस्या कर रहे हैं, परंतु ऋषभदेव महाराज उनके पुत्रों के द्वारा हम सबको यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तपस्या जब करनी ही है तो ऐसी तपस्या क्यों करें जिससे कि एक ऐसा फल प्राप्त हो जो पशुओं को भी उपलब्ध है। तो हमें करना चाहिए तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या। दिव्य तपस्या मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या। महाराज कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में भी बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक श्लोक में वह सबसे पहले विजयते भगव देवो श्री नारायण कहते हैं कि जय जय हो उस भगवान का जिनका नाम है नारायण या श्री कृष्ण। और वो कहते हैं विना यत पद द्वंद्व अंभोरुह संस्मृतिम, बिना उनके दो द्वंद्व अंभोरुह मतलब कमल, यत पद उनके दो चरण कमलों का स्मरण किए बिना। और वो कई कार्यों का वर्णन करते हैं कि जितने भी कार्य हैं अगर ये सब भगवान श्री हरि के स्मृति या स्मरण के बिना किए जाते हैं तो वो सब व्यर्थ हैं। किस प्रकार से व्यर्थ हैं? वो कहते हैं आमनाय अभ्यसनानी अरण्य रुदितम। आमनाय मतलब वास्तव में प्रमाण होता है, प्रमाण मतलब शास्त्र, शास्त्र प्रमाण वेद। तो अगर कोई व्यक्ति वेदों का पाठ कर रहा है, शास्त्रों का पाठ कर रहा है, आमनाय अभ्यसनानी, परंतु बिना संस्मृति नारायण है, तो बिना नारायण श्री हरि के स्मरण किए बिना केवल बस पाठ किया जा रहा है वेदों का पाठ, वो भी एक तपस्या है ना। सुबह शाम बैठना ग्रंथ के सामने और उच्चारण करते रहना, बोलते रहना, पाठ करते रहना, मन कहीं और जा रहा है, शरीर पीठ दर्द कर रहा है और कई चीजें करने की इच्छा है, लेकिन हम बैठे हैं एक स्थान पर और बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, तो तपस्या है, कुछ रस नहीं मिल रहा है, रुचि नहीं आ रही है, फिर भी हम पढ़े जा रहे हैं, वो भी एक दृष्टि से ठीक है, कम से कम शास्त्र को तो पढ़ रहे हैं। परंतु शास्त्रों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान के प्रति भक्ति की भावना जागृत करना। तो महाराज कुलशेखर कहते हैं कि ऐसे वेदों का पठन जो है, बिना भगवान के स्मरण का, बिना भगवान के भक्ति का, अरण्य रुदितम, अरण्य मतलब वन जंगल, रुदितम मतलब रोना या चीख के पुकारना। समझ लीजिए घना जंगल है, उस घने जंगल में जाके कोई व्यक्ति चिल्लाता है बचाओ बचाओ, कौन सुनने वाला है? क्या लाभ है उसको चिल्लाने से? केवल ताकत उतनी खत्म हो जाती है, उतना ही ताकत वो भागने के लिए इस्तेमाल करता, कोई पेड़ चढ़ने के लिए इस्तेमाल करता तो शायद बच भी जाता। तो केवल जंगल में जाके केवल चिल्लाना चीखना कुछ इसमें कोई लाभ नहीं है। तो उसी प्रकार से आमनाय अभ्यसनानी अरण्य रुदितम, तो केवल ऐसे बिना भक्ति भाव से पाठ करना इससे कोई लाभ नहीं। ऐसे अक्सर देखा जाता है कि लोग जो विशेष करके कर्मकांड में होते हैं वो तो सारा पाठ जानते हैं, सारे श्लोक जानते हैं, परंतु कोई भक्ति भाव नहीं होता, क्योंकि उस उद्देश्य से उस ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। भले वो गीता या भागवत या अन्य ग्रंथों के पंडित हों, फिर भी उनका उद्देश्य गलत है, इसलिए वो फल नहीं पाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे तो वहां वो एक ब्राह्मण से मिले श्रीरंगम में, जो गीता का पाठ कर रहे थे परंतु ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे, और अन्य जो ब्राह्मण हैं उनका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो हो सकता है उनका उच्चारण ठीक नहीं था। तो जब महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं रोज गीता के एक पाठ, एक अध्याय का पाठ करता हूं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था, परंतु मैं ठीक से नहीं पढ़ सकता, परंतु आदेश है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं मेरे गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूं, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं। तो ठीक है, आप पढ़ना नहीं जानते, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जब मैं गीता पढ़ता हूं तो मैं याद करता हूं कि ये जो बोल रहे हैं भगवद गीता, ये कौन है? ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परम सत्य हैं, भगवान हैं, फिर भी अपने भक्त के प्रेम से बाध्य होकर वो उनके रथ को चला रहे हैं, उनके दास बने हैं, उनके सेवक बने हैं। तो देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने भक्त का सेवक बन गए हैं। तो भगवान के इन महान गुणों का स्मरण करके मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में गीता के पाठ का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। ये जितने भी लोग बड़े बड़े पंडित हैं, हो सकता है कि गीता के 700 श्लोक उनको जानते हैं अच्छी तरह से, सारे वेदों को जानते हैं, लेकिन भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो क्या लाभ है? तो हमें भी जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के, तो हमें भी इसी भाव से पढ़ना चाहिए। हम क्यों ग्रंथों को पढ़ते हैं? प्रभुपाद जी कहा करते थे कभी कभी कि मेरी एकमात्र शिकायत भक्तों से ये है कि आप लोग मेरे ग्रंथों को पढ़ते नहीं हो नियमित रूप से। वितरण करते हो बहुत सारे ग्रंथ, परंतु पढ़ते नहीं हो। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे संस्था में जितने भी भक्त हों, कम से कम हमारे संस्था में, बाहर की लोगों की बात तो दूर है, उनको तो पढ़ना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस्कॉन के भक्तों को ग्रंथ पढ़ने चाहिए, रोज रोजाना पढ़ना चाहिए, ये एक नियम बनाना चाहिए। जैसे 16 माला जप करना एक नियम होता है, उसी प्रकार से इन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, और इस उद्देश्य से करना चाहिए कि प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करना चाहते हैं। उन्होंने आदेश दिया, जैसे उस दक्षिण भारत के ब्राह्मण ने पढ़ा था, हाँ मेरे गुरु ने कहा था रोज पढ़ो, तो प्रभुपाद जी ने कहा है इसलिए मुझे रोज पढ़ना चाहिए। लेकिन ये पाठ भी तोते का पाठ नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने क्यों कहा था इसको भी याद रखना चाहिए। प्रभुपाद चाहते थे कि इन ग्रंथों का अध्ययन करके हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, भौतिक अनर्थों का निवारण हो जाए और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की जागृति हो। तो इसी उद्देश्य से हमें भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रोज नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। जैसे विद्यार्थी अपने किताबों को पढ़ता है, उसी प्रकार से हमें भी पढ़ना चाहिए, बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तब निश्चित ही भगवान के प्रति भक्ति की भावना जागृत होगी। आगे चल के महाराज कुलशेखर कहते हैं, वेद व्रताणि अन्वहम मेदस छेद फलानी। वो कहते हैं कि वेदों में अनेक व्रतों का, तपस्याओं का वर्णन है जिनको प्रतिदिन करना पड़ता है। तो कई ऐसे लोग बहुत सारी तपस्या करते हैं रोज, परंतु उनकी तपस्या करने का उद्देश्य अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना नहीं है तो फिर क्या होता है, वो केवल एक ऐसे कसरत के समान हो जाता है। मेदस छेद फलानी, इसका फल केवल ये है कि उसका वजन कम हो जाता है। मेद छेद मतलब जो चर्बी है वो कम हो जाती है बस। किसी को थोड़ा मोटापन है, वो अपने वजन कम करना चाहता है तो तरह तरह की चीजें करता है। हर रोज सुबह बहुत तेजी से चलता है और कोई कसरत खाने में कुछ जाता है, कोई कसरत करता है कुछ। तो जो लोग केवल ऐसे तपस्या करते हैं जो वेदों में वर्णित हैं, परंतु भक्ति भाव नहीं है उनके अंदर, तो इसका फल केवल इतना ही है कि उनका वजन कम हो जाता है, चर्बी जो है वो कम हो जाती है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती, वैसे कुछ फायदा नहीं मिलता उनको ज्यादा। और आगे चल के कुलशेखर महाराज ये भी कहते हैं, तीर्थानाम अवगाहनानी च गज स्नानम। अगर तीर्थ स्थानों में हम जाते हैं और स्नान करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य कोई भक्ति से संबंधित नहीं है, बस एक इसको पुण्यकार करके समझ के हम जा रहे हैं, या तो फिर कोई भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए हम जा रहे हैं और तीर्थ स्थान में जाके स्नान कर रहे हैं, तो ये गज स्नान एक हाथी के स्नान करने के बराबर है। इस दृष्टांत को, इस उपमा को हम कई बार सुन चुके हैं, परीक्षित महाराज भी इसका वर्णन करते हैं छठे स्कंद में, जब सुखदेव महाराज उनकी परीक्षा करते हैं, जिनकी परीक्षा की गई, जिन्होंने परीक्षा की सारे वातावरण के देखने के लिए कि वो व्यक्ति कहाँ है जिनको माँ के गर्भ में मैंने देखा था, वो परीक्षित की परीक्षा की जाई है, की जा रही है। सुखदेव महाराज ने कहा कि प्रायश्चित का पथ जो है ये सबसे श्रेष्ठ पथ है। प्रायश्चित मतलब जो कर्मकांड के ग्रंथों में वर्णन किया गया है, ये पाप किया है तो उसका निवारण करने के लिए ये पुण्य कार्य करो, ये प्रायश्चित है। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत उत्तर दिया कि ये तो हाथी के स्नान कुंजर मान्य मन्य कुंजर शौचवत की, ये सब हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी स्नान कर लेता है और बिल्कुल साफ सुथरा होकर बाहर आता है, मिट्टी में लौट जाता है, तो क्या फायदा स्नान का। उसी प्रकार से व्यक्ति तीर्थ स्थान में जाता है, कोई पवित्र नदी में या कुंड में स्नान करता है और फिर से आके पाप करना शुरू करता है तो क्या लाभ। और इसी प्रकार से जो भी पूर्त विधय हुतम भस्मानी, अगर कोई व्यक्ति पुण्य कार्य करता है, ऐसे शास्त्र में कर्मकांड में अनेक पुण्य कार्यों का वर्णन है, जैसे कोई कुआं खोद देना लोगों के लिए, या कोई वृक्षारोपण करना, लोग जो राही होते हैं उनको छाव देने के लिए, ऐसे अनेक चीजें होते हैं पुण्य के मार्ग में। लेकिन अगर बिना भक्ति भाव के हम ये कार्य कर रहे हैं तो हुतम भस्मानी, मानो कि हम आहुति दे रहे हैं अग्नि में नहीं राख में, स्वाहा स्वाहा कह रहे हैं तो क्या लाभ। जब घी आदि हम अर्पण करते हैं यज्ञ में, अग्निहोत्र होती है तो अग्नि होनी चाहिए और अग्नि में अर्पण किया जाता है, क्योंकि अग्नि भगवान विष्णु का मुख कहलाता है, भगवान विष्णु अग्नि से और ब्राह्मणों के मुख से वो भेंट स्वीकार करते हैं। तो अग्नि न होते हुए वहां अगर केवल भस्म हो, राख हो, तो क्या फायदा, क्या लाभ मिलने वाला है। तो इस सुंदर श्लोक के माध्यम से महाराज कुलशेखर हमें बतलाना चाहते हैं कि हमारा जप तप जो भी कुछ है वो केवल भगवान को प्रसन्न करने हेतु होना चाहिए, अन्यथा वो निष्फल है, बेकार है। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना चाहा था, परंतु भगवान के आदेशानुसार, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हाँ मेरे प्रभु इस सृष्टि की रचना करवाना चाहते हैं और मैं आशा करता हूं कि मैं वो व्यक्ति बन जाऊं जो कि भगवान के लिए इस ये सेवा कर दूं, तो भगवान ने उनको ब्रह्मा जी का पद प्रदान कर दिया। चलो अब इस सृष्टि की रचना करो और इस सेवा के लिए जो तुम्हें ज्ञान चाहिए, जो शक्ति और जो योग्यता चाहिए वो भी मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी तो स्वयं भगवान उनके सामने प्रसन्न हुए, सारे वैकुंठ जगत का दर्शन उनको कराया और फिर आके करे स्पृशन, प्रीत मनाह करे स्पृशन, भगवान ने ब्रह्मा जी का हाथ मिलाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं ब्रह्मा जी, क्योंकि तुम्हारी तपस्या निष्कपट की तपस्या थी और ऐसी तपस्या से मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता जो कि कूट योगियां करते हैं। तुम्हारी तपस्या कैसी थी? शिश्रक्षया चिरम भृतेन तपसा दुस्तोषः कूट योगिनाम। चिरम मतलब बहुत लंबे समय से, भृतेन तपस्या जो तुमने तपस्या की थी, शिश्रक्षया इस सृष्टि की रचना करने के लिए, उससे मैं प्रसन्न हूं। लेकिन कूट योगिनाम दुस्तोषः, कूट योगियों से मैं प्रसन्न नहीं होता। कूट शब्द के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, कभी उल्टा भी अर्थ हो जाता है। कूट मतलब स्थिर, कूटस्थम, जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं। लेकिन यहां कूट शब्द का अर्थ है झूठा, जो सही नहीं है, छल या कपट। कूट और कपट का दोनों शब्दों का संबंध है। तो ऐसे योगियों से जो तपस्या करते हैं परंतु मुझे प्रसन्न करने के लिए नहीं, तो ऐसे योगियों की तपस्या में बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल के दुनिया में भी लोगों ने तरह तरह से तपस्या करने के नए तरकीबों का आविष्कार किया है। उदाहरण यहां प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बड़े बड़े बम जो विस्फोट कराने के लिए अणु एटम बम वगैरह का आविष्कार कर रहे हैं, इसके पीछे भी कितनी तपस्या की आवश्यकता है। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं हालांकि हर एक आदमी की मृत्यु होने वाली है, लेकिन ऐसी तपस्या जिसके ज्यादा लोगों की मृत्यु और भी जल्दी होगी, इससे भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? केवल भक्ति ही वो कार्य है जो कि भगवान को प्रसन्न कर सकता है। वैसे हम लोग रोज भागवत तो सुनते हैं लेकिन रोज गीता नहीं सुनते हैं। और भागवत की शुरुआत वहां से होती है जहां गीता का अंत होता है। गीता का अंत होता है शरणागति के स्तर से, जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस स्तर से भागवत की शुरुआत होती है। और इसलिए प्रभुपाद जी अक्सर अपने भागवत के तात्पर्यों में गीता के श्लोकों का उल्लेख करते हैं, वर्णन प्रमाण देते हैं। परंतु गीता ठीक ठाक अगर हम जान लें, समझ लें, तो भागवत की रुचि और बढ़ती है, भागवत अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज तपस्या के विषय पे एक दो चार श्लोक गीता से पढ़ें, ताकि हम जान लें कि भगवान तपस्या के बारे में क्या कहते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपस्याम श्लोक तो आप सब जानते ही हैं, शांति का सूत्र है, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो भी यज्ञ और तप आदि हम करते हैं, इन सब का भोक्ता केवल मैं ही हूं। ऐसे कई जगह भगवान ने गीता में बहुत कुछ कहा है। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उन लोगों के बारे में जो गलत ढंग से तपस्या करते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः। तो ऐसे कोई लोग हैं अशास्त्र विहितम घोरम, अशास्त्र मतलब जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, ऐसे घोर तपस्या करते हैं। घोरम ऐसी तपस्या जो बहुत भयानक होती है, अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। तप्यन्ते ये तपोजनाः, ऐसी तपस्या करते हैं ये लोग, तपस्वी लोग। लेकिन ऐसी तपस्या किस चीज से उत्पन्न होती है? दंभ अहंकार कामराग बलान्विताः। वो केवल काम और राग से उत्पन्न होती है और दंभ और अहंकार से वशीभूत होकर ऐसे लोग ऐसी घोर तपस्या करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्धि आसुर निश्चयन। तान विद्धि आसुर निश्चयन, ये लोग निश्चित ही असुर हैं जो इस प्रकार से घोर तपस्या करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम, अपने आप को भी कष्ट देते हैं। माम च एव अंतः शरीरस्थम, और मैं जो शरीर के अंदर हूं मुझे भी कष्ट देते हैं, क्योंकि भगवान तो परमात्मा के रूप में विराजमान है ना सबके हृदय में, शरीर भी उनकी संपत्ति है। और हम जब किसी सुख और दुख का अनुभव करते हैं उससे पहले भगवान अनुभव करते हैं। भगवान के किसी चीज को अनुभव किए बिना हम उस चीज का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो भी हम लोग अनुभव करते हैं हमसे पहले भगवान उस चीज का अनुभव करते हैं। तो हमारे शरीर को आवश्यकता से ज्यादा कष्ट देना, तपस्या करना, ये न केवल इस शरीर को कष्ट पहुंचता है, भगवान कहते हैं मुझे भी कष्ट होता है। तो ऐसी तपस्या केवल असुर लोग करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप आदि, भस्मासुर आदि, ऐसे कई कहानियां हैं, समय नहीं है, आप सब इनके बारे में जानते हैं। भस्मासुर ने कैसी तपस्या की, अपने शरीर का मांस बस काट काट के अग्नि में अर्पण कर रहा था। क्या मैं ऐसे कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी तपस्या करेगा? तो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए। हिरण्यकश्यप भी ऐसे ही कर रहा था, भगवान को प्रसन्न करने हेतु नहीं था, केवल बिना वजह अपने इंद्र तृप्ति के लिए। दंभ अहंकार काम राग बलान्विताः, इनसे उत्पन्न होने वाले काम और राग से उत्पन्न होने वाली जो तपस्या होती है वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर आगे चल के भगवान कृष्ण गीता के 17वें अध्याय में कहते हैं कि तीन प्रकार की तपस्या होते हैं। एक वो जो हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है, दूसरा जो हमारे वाणी के द्वारा किया जा सकता है, और तीसरा जो मन के द्वारा किया जा सकता है। तो भगवान कहते हैं देव द्विज गुरु प्रज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शारीरम तप, अब देखिए तप तो सभी को करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी जगह स्पष्ट कह दिया है कि यज्ञ दान और तप चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। लेकिन तप दान यज्ञ ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहां पर शारीरिक तपस्या का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांच प्रकार के होते हैं। पहले पूजनम मतलब सम्मान देना, नमस्कार करना। किनका सम्मान करना चाहिए? देव भगवान का, द्विज ब्राह्मणों का, गुरु गुरुजनों का, प्रज्ञा जो हमसे वरिष्ठ हैं, जैसे कोई हमसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़े हैं, कोई बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए, झुकना चाहिए। हाय मॉम हाय डैड नहीं चलना चाहिए, झुकना चाहिए। आजकल अमेरिका में वगैरह वो अपने माता पिता को नाम से पुकारते हैं। विश्वविद्यालयों में भी अपने अध्यापक को नाम से पुकारते हैं, और कई जगह ऐसे भक्त बता रहे थे जो अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए, फिर वो अध्यापक के साथ कभी सिगरेट पी लेते हैं, कभी शराब पीने बैठ जाते हैं, या जब क्लास में बैठे हैं तो पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं। तो ये संस्कृति बिल्कुल नष्ट हो गई है। जो भी हमें सिखा रहे हैं, भले वो कोई भौतिक विषय क्यों ना सिखा रहे हों, एक गुरुजन है हमारे लिए, उनका सम्मान करना चाहिए उचित ढंग से। पूजनम, तो सम्मान करना सबका। शौचम, अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। फिर उसके बाद आर्जवन, मतलब जीवन में बहुत सरल होना चाहिए। गहराई से चर्चा नहीं करेंगे, आप अवश्य पढ़िएगा, ये 17वां अध्याय है गीता का। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अहिंसा, तो ये 5 शरीर के तपस्याएं हैं। और फिर हमारी वाणी की तपस्या, वो क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वाणमयम तप उच्यते। वाक्मय तप, अपने वाणी की तपस्या, वो क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम। उद्वेग मतलब विचलित होना, तो उद्वेग करम वाक्यम मतलब ऐसे वाक्य जो दूसरों को विचलित कर देता है, दूसरों को हृदय में तीर की तरह जाके चुभ जाता है। तो यहां कृष्ण बता रहे हैं अनुद्वेग करम वाक्यम, मतलब ऐसे वचन हमेशा बोलने चाहिए जिनसे कि दूसरे लोग विचलित न हो। ये वाणी की तपस्या है। कभी कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमें अपने आप को रोकना चाहिए, बोलने के पहले बहुत सोचना चाहिए आदमी को। जब रजोगुण होता है ज्यादा तो आदमी कह देता है, बाद में पछताता है। लेकिन जब तीर छूट जाती है या बंदूक से गोली निकल जाती है तो फिर उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता। अरे अरे, हमने बंदूक से गोली मार दी, उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन जब गोली निकल गई अब क्या किया जा सकता है। उसी प्रकार से जब कोई वचन निकल जाते हैं मुंह से, तो निकल गए तो निकल गए, उसके बाद उन वचनों को मुंह में नहीं डाला जा सकता। तो बोलने के पहले बहुत सोचना चाहिए। ये तपस्या है, वाणी की तपस्या है। सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। ये झूठ बोलना बहुत अच्छी आदत नहीं है, बहुत बुरी आदत है। सत्य, छोटी छोटी बातों में भी हमें सत्य बोलने की आदत करनी चाहिए अपने आप को। एक भक्त बता रहे थे कि किसी घर में फोन आया, भक्त के घर में, और पिताजी की कोई व्यवसाय के कोई आदमी थे, कोई व्यवसाय के बारे में बात करनी थी। पिताजी भी भक्त है, तो बच्चे ने फोन उठाया तो उस सामने वाली व्यक्ति ने कहा होगा कि पिताजी को बुलाओ। तो पिताजी ने बच्चे से कहा, कह देना मैं नहीं हूं। कोई कारण बात नहीं करना चाहा होगा, कोई पैसे मांगे होंगे, कुछ किया होगा। तो बच्चे ने जाके कह दिया, पिताजी कह रहे हैं वो घर में नहीं है, है ना। तो देखिए, बच्चा ईमानदार, वो सच बोलता है, जो जैसा है वो बोल देता है। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ये कपट, झूठ बोलना, ऐसे बोलना, वैसे बोलना। अब ये बच्चा कल जाकर भी ऐसे ही बोलेगा, झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो ये भी तपस्या है, कभी कभी झूठ बोलना चाहते हैं लेकिन रोक लेना चाहिए। प्रिय हितम, और ऐसे ही वाक्य बोलने चाहिए जिनसे दूसरों को कुछ लाभ हो। वैसे ये जिह्वा, हम तो सुन चुके हैं, रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं, ये वाचो वेगम बहुत जबरदस्त है। आदमी जो है वो उपवास करे, भले खाए पिए नहीं एक दिन, लेकिन एक दिन बिना बोले आदमी को बैठने को बोलो, तो इससे बड़ी तपस्या नहीं है कोई। वाचो वेगम, ये जिह्वा वाच, ये बहुत ही प्रबल है। इसलिए जो हम बोलते हैं केवल हित के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। अगर हमारे वाक्यों से किसी दूसरे का हित न होता हो, कोई वो लाभदायक वचन न हो, तो नहीं बोलना चाहिए। स्वाध्याय अभ्यसनाम चैव, स्वाध्याय मतलब जब हम कोई शास्त्रों का पाठ करते हैं, तो बोलना है तो ऐसे पाठ करते समय, जैसे गीता का पाठ कर रहे हैं रोज बैठ के अपने कमरे में, तो वैसे वचन बोलने चाहिए, वो तपस्या है, वाणी की तपस्या। फिर भगवान वर्णन कर रहे हैं मन की तपस्या। मन प्रसाद है,
सौम्यत्वं मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। मनः प्रसादः, मन को संतुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। वो कैसे संभव है? भगवान के ऊपर चिंतन करके, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं जो हमने ग्रंथों में पढ़े हैं उनके ऊपर चिंतन करना, या जो हमने प्रवचन में सुने हैं उन विषयों के ऊपर चिंतन मनन करना, इससे मन संतुष्ट हो जाता है। जब हम विषय भोग के ऊपर चिंतन करते हैं तो मन असंतुष्ट हो जाता है। सौम्यत्वम, बिना कपट के हमारा व्यवहार जो है अन्यों के साथ सीधा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सामने से कुछ कहें पीछे से कुछ और कहें, ऐसा नहीं। आत्म विनिग्रह मतलब आत्म संयम, अपने इंद्रियों को वश में कर लेना। भाव संशुद्धि, अपने अस्तित्व को ही शुद्ध करना भक्ति के अनेक क्रियाओं से। तो खैर, ये है मन की तपस्या। और फिर ये त्रिविध तपस्या जो है, ये तीन प्रकार की तपस्या तीनों गुणों में की जाती है। तो भगवान बताते हैं कि ऐसी तपस्या, चाहे वो शरीर की तपस्या, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, वो सतगुण में, रजगुण में और तमगुण में होती है। लेकिन देखिए, भगवान ने इन तीन जो तपस्याओं का वर्णन किया है वो क्रम से किया है। सबसे पहले शरीर की तपस्या जो आसान है, फिर वाणी की तपस्या जो थोड़ा मुश्किल है, मन की तपस्या जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। और इन तीनों प्रकार की तपस्याएं सतगुण, रजगुण और तमगुण में हो सकती हैं। तो सतगुणी तपस्या क्या है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत् त्रिविधम नरैहि अफल आकांक्षभिर् युक्तैहि सात्विकम् परिचक्षते। तो जो तपस्या श्रद्धा से की जाती है, अफल आकांक्षभिर्, बिना फल के इच्छा से किया जाता है, वो सात्विक तपस्या है, जो कि बिल्कुल कर्तव्य के रूप में किया जाता है, श्रद्धा से किया जाता है, वो सात्विक तपस्या। फिर राजसिक तपस्या क्या है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। सत्कार मान पूजार्थम तपः, जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए किया जाता है वो तपस्या क्या है? वो है राजसम, राजसिक तपस्या है। और दम्भेन च एव यत् क्रियते यत् तद् इह प्रोक्तम, जो दम्भ के द्वारा, अहंकार के द्वारा आदमी करता है। अहंकार को पोषण चाहिए कोई, तो पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब चीजें चाहिए, इसलिए व्यक्ति तपस्या करता है। और ऐसी तपस्या भगवान कृष्ण कहते हैं चलम और अध्रुवम। चलम मतलब स्थिर नहीं है, अध्रुव मतलब बहुत क्षणिक ही रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। और फिर तामसिक तपस्या का वर्णन करते हैं भगवान कृष्ण। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्सादानार्थम वा तत्तामसम उदाहरितम्। जो मूर्खता से, मूढ़ ग्राहेण, जो मूर्खता से कष्ट लेकर कार्य किया जाता है, जिससे कि यत् पीड़या क्रियते तपः आत्मनः, अपने आप को भी जिससे कष्ट मिलता है, परस्य और दूसरों को भी कष्ट मिलता है, तो वो तत् तामसम उदाहरितम्। तो ऐसी तपस्या जो है वो तमोगुणी तपस्या कहलाती है। तो हमें किस प्रकार की तपस्या करनी चाहिए? सतोगुणी, हाँ ठीक है, परंतु महाराज ऋषभदेव कह चुके हैं तपो दिव्यम, हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए। यहां जो सात्विक तपस्या है वो भी श्रद्धा से की जाती है, हमारे तपस्या के फल से निरासक्त होकर की जाती है, परंतु इसमें भी भक्ति भावना इतनी विकसित नहीं है। तो हमारे लिए जो तपस्या उचित है वो भक्ति की तपस्या है, वो प्रेम की तपस्या है, भगवान को संतुष्ट करने की तपस्या है। तो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए अनेक तपस्याएं दिए हैं, जैसे कि हम सुबह उठ के मंगल आरती में आते हैं, हम जप 16 माला का कम से कम करते हैं, उनके ग्रंथों का श्रवण और अध्ययन करते हैं, केवल प्रसाद मात्र लेते हैं, एकादशी और जन्माष्टमी आदि दिवसों के ऊपर हम उपवास रखते हैं, ऐसे अनेक चीजें हैं। तो ऐसी तपस्याएं भगवान को प्रसन्न करने हेतु हमें करनी चाहिए। तपस्या ये गलत चीज नहीं है, इसके बिना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु तपस्या हमारी दिव्य होनी चाहिए, इससे अवश्य हमारे अंतिम लक्ष्य को जो कि भगवत प्रेम है हम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, क्षमा कीजिए थोड़ी देरी हो गई। कोई एक कोई टीका टिप्पणी प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौ प्रेमानंदे।